आजकल हमने देखा सोशल मीडिया पर एक वाकया बड़ा गर्दिश कर रहा है, और वो वाकया ये है कि एक साहब ने कहा, जी मैंने कुर्बानी का इरादा किया तो मैंने कहा मैं अपने दोस्त को लेके मंडी जाता हूँ, वो बड़ा माहिर है जानवरों को देखने का पहचानने का। तो दोस्त के घर पे गया तो वहाँ मालूम हुआ गर्मी में बच्चे बिलक रहे हैं और पसीने से शराबूर बैठे हुए हैं। तो कहता है कि मैंने कहा भाई ये मैं जाकर कुर्बानी कर रहा हूँ, तो इससे तो बेहतर है एक जनरेटर लेके मैं इनको दे दूँ। तो बज़ाहिर ये कहानी सुनने के बाद अक़ल, इल्म, शऊर, इखलाक, हसासियत, इंसानियत सब कुछ ये कहती है कि भाई अगर कोई ज़रूरत पैदा हुई है तो कुर्बानी को मौखर करो और ये चीज़ें पूरी करो। तो हमारे यहाँ तो ये जो ज़रूरत एक घर में पैदा हुई है, माशरे की सतह पर, कौम की सतह पर, इस वक्त हम देखते हैं इन्फ्लेशन है, जितनी महंगाई है, पेट्रोल की चीज़ें हैं, तो फिर तो अकल ये कहती है कि सारे लोग बजाय कुर्बानी करने के लोगों को जनरेटर, दूध पानी यही लेके दे दें।
जहाँ तक कौमी सतह पर फैसले करने का ताल्लुक है तो वो मैं और आप नहीं करते। कौमी सतह पर अगर कोई फैसले करने हैं तो वो जो मुसलमानों का इज्तिमाई नज़्म है वो करेगा। यानी अगर वो समझता है कि किसी मौके पर ऐसी आफत आ गई है कि जिसमें हमें एक नफल इबादत की बजाय लोगों के मुंह में लुकमा डालना है, वो फैसला कर लेगा इस बात का, और इसकी गुंजाइश है। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा फिर हम कौमी सतह पर यानी हमारे हुक्मरान दारुल हुकूमत में कुर्बानियाँ कर देंगे।
अच्छा,
उसमें वो चंद कुर्बानियाँ भी पूरी कौम की तरफ से किफ़ायत कर जाएंगी। अल्लाह से हम ये कहेंगे, अल्लाह के हुजूर में ये कहेंगे कि इस वक्त एक आफत है, एक मुसीबत है, लोगों के ऊपर एक उस्ताद पड़ी हुई है, वो इस काबिल नहीं थे, या कोई और मसला पैदा हो गया, तो उसकी नौयत फिर ये होगी। ज़ाहिर है कि तमाम इबादात में ये चीज़ मलहूज रखी गई है कि अगर उनमें कोई मशक्क़त पैदा हो जाती है, लोगों के लिए उनको अदा करना नामुमकिन हो जाता है। ये तो हराम हलाल में भी रखा गया है कि उसमें इज़्तरार पैदा हो गया, तो उसका तरीका ये होगा। जहाँ तक फ़र्द का ताल्लुक है तो उसका ये काम नहीं है कि वो सारी दुनिया के मामलों को सामने रख के राय कायम करे, उसको अपने गिर्द व पेश में राय कायम करनी होती है। और अगर आपने इस तरह का कोई वाकया पढ़ा है तो मेरे ख्याल में उस मौके के ऊपर उनको हक हासिल था कि वो ज़रूरत का लिहाज करके अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो कर दें। यानी इसमें दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि ये इबादत तो कोई अहमियत नहीं रखती। इबादत बहुत बड़ी अहमियत रखती है, वो नज़र की इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। और ये चीज़ भी अपनी जगह हमेशा मलहूज रहनी चाहिए कि हम एक इबादत करने के लिए जा रहे थे, उधर एक बंदे के लिए एक ऐसी ज़रूरत सामने आ गई, वो मेरे भाई के लिए आ सकती है, अजीज़ के लिए आ सकती है, हमसाए के लिए आ सकती है। उस मौके के ऊपर फिर इंसानी ज़रूरतों को तरजीह दी जाती है। तो इंसानी ज़रूरत हमारे सामने आ गई, हमारे गिर्दोपेश में आ गई, हमारे माहौल में आ गई, हमारे ताल्लुकात में आ गई, उसको तरजीह मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। वो इंसानी ज़रूरत अगर फ़र्ज़ के दर्जे की है तो उस दर्जे में तरजीह मिलेगी, अगर वो इस्तेहबाब मौक़त के दर्जे की है तो उस दर्जे में तरजीह होगी। तो ये बिल्कुल एक इनफरादी फैसले होते हैं, इनको इस तरह मौजू नहीं बनाना चाहिए। अलबत्ता उस मौके के ऊपर भी हर शख्स को तवज्जो दिलानी चाहिए कि कुर्बानी एक बहुत बड़ी इबादत है और इबादत का कोई मुतबादल नहीं होता।
ठीक, अच्छा हमसे बताइएगा कि हम पूरा साल बाकी कामों में यानी गुर्बत, इन्फ्लेशन, ये महंगाई, ये सब कुछ होता है, लेकिन शादियां भी उसी तरह हो रही हैं, शादी हॉल भरे हुए हैं, हम 14 अगस्त भी मनाते हैं, 23 मार्च की परेड भी होती है, इसी तरीके से बाकी जितनी रसूमात हैं, दिन हैं, त्यौहार हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, फूल, ये सब करोड़ों अरबों रुपये लग रहे होते हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है कि ये दीन के मौके पर आकर सारी की सारी गुर्बत और हसासियत और आवाम का ये एहसास जो है वो सीनों में जाग जाता है?
उसकी वजह मैं कई मरतबा अर्ज कर चुका हूँ, असल में खुदा के साथ ताल्लुक हम जिंदा ताल्लुक के तौर पर देख ही नहीं रहे होते। यानी हमारा ये मसला बन चुका हुआ है कि हम चूँकि तवारुस में इस्लाम को हासिल कर चुके हैं, हमारे वालदैन मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए, इस्लाम या दीन हमारा शौरी एहसास नहीं बना। और पिछले इस कोई 100-150 साल में बहुत से ऐसे मुफक्किरीन पैदा हुए हैं जिन्होंने मज़हब को भी दुनियावी मसले के हल के तौर पर पेश किया है, तो उससे एक अमूमी रुझान ये बन गया है और इस तरह की इबादत की कोई अहमियत नहीं होती। भाई ये बहस तो फिर हर चीज़ के बारे में शुरू हो जाएगी, वो 5-10 मिनट जो आप अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं उसके बारे में भी हो जाएगी। रोज़ा आप रखते हैं तो उसमें भी आप जानते हैं कि ताकत इंतहाई कम हो जाती है, उसका असर आपके काम के ऊपर भी पड़ता है। तो असल चीज़ ये है कि मेरा मेरे परवरदिगार के साथ भी एक ताल्लुक़ है। यानी क्या आप कभी माँ की जिम्मेदारियों को और माँ के साथ ताल्लुक़ को इस तरह तोलते हैं, बाप के साथ तोलते हैं? नहीं करते ना इस तरह। तो इसका मतलब ये है कि माँ का ताल्लुक़ तो मैं महसूस करता हूँ, बाप के साथ भी ताल्लुक़ महसूस करता हूँ, खुदा के साथ ताल्लुक़ महसूस नहीं करता। तो असल में ये हमारे शऊर और एहसास में अगर खुदा के साथ ताल्लुक़ हो तो हमें मालूम हो कि मेरे रब के साथ मेरे ताल्लुक़ का इजहार है कुर्बानी, इजहार है हज, इजहार है उमरा, इजहार है नमाज, इजहार है रोज़ा, फिर इसकी अहमियत इंसान पर वाजे होती है। तो इस तरह के किसी इकदाम में जिसका आपने हवाला दिया है, ये ख्याल कभी नहीं करना चाहिए कि कुर्बानी तो बस کر لی نہیں, قربانی کا اہتمام ہونا چاہیے, یعنی قومی سطح پر اہتمام ہونا چاہیے, لوگوں کو بھی کرنا چاہیے, جس کے پاس استطاعت ہے ضرور کریں, لیکن یہ فرد فرد پر لازم نہیں کی گئی. یہ نفل عبادت ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہوگا یا اس میں کوئی مشقت ہے یا معاشرے کے حالات یا میرے خاندان کے حالات ہیں, خاندان کی طرف سے کر لیں, خاندان کا سربراہ کر دیں, اور اگر نوبت وہاں تک آ گئی ہے جو آپ نے کہا ہے تو قومی سطح پر مسلمانوں کے حکمران کریں اور پوری قوم اپنے احساس کے ساتھ اس میں شریک ہو جائے.
ٹھیک, اگر ہم سے بتائیے گا, یہ جو پورا فلسفہ ہے, بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں قربانی کے بعد تو اصل میں گوشت حاصل ہوتا ہے, کلیجی پکری ہے, باربیکیو ہو رہا ہے, عید کا موقع, خوشی مسرت, تہنیت کا موقع ہوتا ہے, تو پھر مثلا اگر یہ پس منظر رکھ کے ہم جائیں گے تو پھر تو وہ گوشت میرے لیے کوئی اس طریقے سے خوشی کا موقع تو نہیں بنے گا کہ بعد میں پارٹی ہو رہی ہے. یہ تو ایک پورا عبادت کا تصور, عبادت تو سنجیدگی, متانت, شعوری احساس اس میں ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ جو کچھ پھر پوسٹ قربانی ہمارے ریچولز ہوتے ہیں یہ بھی پھر اس طرح قائم نہیں رہیں گے.
نہیں, کیوں قائم نہیں رہیں گے؟ یعنی میں صبح اٹھ کر میں نے تکبیریں بلند کی, میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کا لفظوں میں اظہار کیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کیا خوبصورت چیز ہے یہ. میں بلند کرتے ہوئے عیدگاہ میں گیا, وہاں جا کے میں نے نماز پڑھی, اپنا رب کے سامنے اپنا سر رکھ دیا, وہاں میں نے خطبہ سنا, اس کے بعد میں نے آ کے قربانی کی. یہاں تک میں عبادت میں تھا, اب جیسے ہی وہ عبادت کا کام مکمل ہو گیا تو میں دنیا میں ہوں. یعنی اب میں اپنے پروردگار کی عبادت سے فارغ ہوا ہوں تو اب میرا رخ لوگوں کی جانب ہوگا. تو عید ایک تہوار بھی ہے, ہم خوشی بھی کریں گے, ہم اس کا گوشت بھی کھائیں گے, ہم دعوت بھی کریں گے, سب کام کریں گے. یہی چیز ہے جو ہمارے دین میں رکھی گئی ہے. جب ہم عبادت میں تھے تو وہاں دنیا کا کوئی شائبہ ہم اپنے قریب نہیں آنے دیں گے, اور جب اللہ کی بارگاہ سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد بہرحال اللہ کے ہمیں حق دیا اس بات کا کہ ہم ملیں بھی, ملائیں بھی, ہم دعوتیں بھی کریں, ہم بیٹھیں بھی. ہمارے لیے سب زینت کی چیزیں حلال کی گئی ہیں, اور ہمارا پروردگار ان سب چیزوں کے معاملے میں جب ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ اس کی تحسین کرتا ہے, تو اس پر کوئی نقیر کرنے کا کیا سوال. ٹھیک.